नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए श्री जाफर हसन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जॉर्डन वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से वे अत्यंत भावुक हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्नेह, भारत की प्रगति पर गर्व और मजबूत सांस्कृतिक बंधन भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच अटूट संबंध को दर्शाते हैं। किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 37 वर्षों के अंतराल के बाद जॉर्डन के द्विपक्षीय दौरे पर हैं। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। राज्यसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत देश विकास की ओर अग्रसर है।
हमारा देश लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया इस लोकतंत्र को निरंतर पुष्पित और पल्वित करती आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर सेक्टर में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलकर विकसित भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है।
श्री मेघवाल ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के डॉक्टर एम थंबीदुरई ने कहा कि शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है और पारदर्शिता मतदाताओं को सशक्त बनाती है। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र बनने में सुविधा प्रदान करना है।
इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनाने में सुविधा देने और उत्कृष्टता सुदृढ़ तथा पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा देना है।
लोकसभा में परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और अभिवर्धन विधेयक 2025 शांति प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और तकनीकी पहलुओं के विकास के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को मंजूरी दे दी है। इसमें 1,32,000 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें 41,455 करोड़ रुपए से अधिक के शुद्ध नकद व्यय के प्रस्ताव भी शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर कड़ाई से कार्यान्वयन का भी आह्वान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश को छोड़ने पर सहमति जताई है। हालांकि श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति पर अमेरिका के दूतों के साथ बातचीत में रूस के कब्जे वाला क्षेत्र सौंपने के अमेरिका के दबाव को खारिज कर दिया। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों ने सीनियर और जूनियर स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किए। ये मुकाबले नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेले गए। उधर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को आईसीसी ने नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। शेफाली ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 78 गेंद पर 87 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।